ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज एकादशी है तो आज चर्चा होगी प्रभुपाद लीलामृत पे। प्रकरण नंबर 37 है, टॉपिक है एक मंदिर हो। कलकत्ता, मार्च 1971। प्रभुपाद जी कौन से वर्ष में गए थे यूएसए? 1965। ये चर्चा कितने दिन बाद की है? 6 ईयर्स, 6 साल हो गए। कितनी आयु में गए थे? 69 में 6 साल जोड़े तो क्या आयु बनेगी? 75 साल की उम्र में प्रभुपाद जी के पास टॉपिक आ रहा है हमारे पास पढ़ने के लिए, एक मंदिर हो। हम लोगों में से अपने आसपास देखते हैं कि 75 इयर्स की एज में कितने लोग एक्टिवली कार्य कर रहे होते हैं। हाउ मेनी पीपल? आप बताओ प्रभु जी, आप उस एज में मेरे साथ साथ प्रोग्रेस कर रहे हो। वी आर गोइंग इन दैट एज डे बाय डे। 60s हम क्रॉस कर चुके हैं तो 60 की उम्र में हमारे पास जाके ना घुटने चलते हैं, ना कंधे चलते हैं, ना कमर चलती है, ना टांगे चलती हैं, चला नहीं जाता है। चाहते हैं कि कहीं एक शांत स्थान में जाके बिल्कुल बिना किसी काम के आराम से जीवन बिताया जाए। ऐसा भाव आता है नहीं आता मन में? ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे शक्ति कम होती चली जाती है, लाइफ के अंदर जो वर्किंग फोर्स है वो खत्म होती चली जाती है, डिमिनिश होती चली जाती है। पर यहां जो है प्रभुपाद जी की लाइफ के अंदर वो फोर्स बढ़ती चली जा रही है। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कमी नहीं आ रही। 1977 तक, अभी टेम्पल बनने शुरू हुए हैं, 1977 तक, 65 से लेकर 77 तक कितने साल बनते हैं? 12 साल में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें प्रभुपाद जी ने अमेरिका के सिवाय और कौन कौन सी जगह का भ्रमण किया? कितने देशों में गए? 2-4 में। परंतु इन टोटल इन 12 साल के अंदर 14 बार उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया है। इमेजिन करिए इस एज में कितना मेहनत किया होगा। 14 टाइम्स ही हैज मूव्ड अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। हम लोग सोचते हैं कि अरे कौन जहाज में 24 घंटे लटका के पैर बैठेगा। यहां से अमेरिका जाना हो तो कितने घंटे की फ्लाइट है? हाउ मेनी आवर्स? 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे। अगर आपको जो है अमेरिका के बीच में जाना है, बीच में न्यूयॉर्क में जाना है तो वाया इंग्लैंड चले जाएंगे, वैंकूवर जाना है तो वाया जापान चले जाएंगे। पर अगर सेंटर में जाना है तो कोई भी रास्ता लेंगे तो 20-22 घंटे चाहिए। 20-22 घंटे पैर लटका के 75 की एज में कौन बैठना चाहेगा? वो विल लाइक टू सिट? इतना कठिन कार्य है। हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो ये जो ये पहला वाला वॉल्यूम कितने लोगों ने पढ़ा है ठीक से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट? बड़े देर में हाथ खड़े कर रहे हैं, वो भी ऐसे छोटा सा, कोई देख ना ले। कोई देखे नहीं। मेरे शब्द चुभ सकते हैं, कष्टदायक हो सकते हैं, परंतु शब्द प्रयोग करने से पहले ही क्षमा मांगता हूं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मैंने बीटीजी में बहुत साल पहले, कोई 85-86 की बात है, जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो पढ़ा था, एक ओल्ड लेडी को कैटरेक्ट हो गया है। कैटरेक्ट मतलब आंखों में मोतिया उतर आया है, सफेद मोतिया जिसे कहते हैं। और وہ جو ہے ایک ٹیکسی میں جا رہی ہے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اور انسینیٹلی وہ لیڈی جو ہے بھکت نہیں ہے، پر جو ٹیکسی کا ڈرائیور ہے وہ ڈیووٹی ہے، کانگریشنل ڈیووٹی ہے، مندر جاتا ہے، کنٹھی دھارن کرتا ہے، سولہ مالا جپ کرتا ہے، چار نیم کا پالن کرتا ہے، کتھا سنتا ہے، مطلب ہی از ان کرشنا کانشیسنیس. ڈرائیو کرتے ہوئے اس لیڈی کی اور اس ڈرائیور کی چرچا ہوتی ہے، تو لیڈی اس سے کہتی ہے کہ میری آنکھ میں موتیا اتر آیا ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جا رہی ہوں. تو وہ کہتا ہے دیکھیے یہ آپ کا دربھاگیہ ہے، آپ کے کرموں کا پھل ہے کہ آپ کو موتیا اتر آیا، پر یہ آپ کا سوبھاگیہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر مل رہا ہے جو آپ کے موتیا کا علاج کر سکتا ہے. تو ایک ہی سچویشن میں دربھاگیہ بھی ہے اور سوبھاگیہ بھی ہے. آئی ایم کلیئر؟ سچویشن ایک ہی ہے کہ موتیا اترا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، اور اس بھکت کے ورڈز ہیں کہ آپ کا دربھاگیہ ہے کہ آپ کے موتیا اتر آیا ہے، آپ کا سوبھاگیہ ہے کہ آپ کو اچھا ڈاکٹر ملا. انہی شبدوں کا یہاں پریوگ کرتا ہوں کہ آپ کا سوبھاگیہ ہے کہ آپ کرشنا کانشیسنیس میں ہیں، آپ کا سوبھاگیہ ہے مندر میں آئے ہیں بھوتک سنسار سے نکل کر، آپ کا سوبھاگیہ ہے کہ آپ کتھا سننے کو مل رہی ہے، پرساد کھانے کو مل رہا ہے، بھکتوں کا سنگ مل رہا ہے، ٹھاکر جی کے درشن مل رہے ہیں، پر آپ کا دربھاگیہ ہے کہ آپ نے پربھوپال لیلا امرت نہیں پڑھی. سوچ کے چلیے گا، جس نے نہیں پڑھی ہے اس کی شردھا کچی رہ جاتی ہے، بیکاز ایک بار آپ پڑھ لیں گے نا پارٹ ون جو اس کا آ رہا ہے، پارٹ ون جس نے ایک بار پڑھ لیا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں نے شروع میں جوائن کیا تو صرف انگلش کا ایک والیوم آیا تھا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اس میں جو والیوم تھا پلانٹنگ دی سیٹ، اور جو پہلے پورشن میں جو سٹرگل دکھایا گیا، پربھوپاد جی نے جو سٹرگل کیا ہے، جس نے وہ پورشن پڑھا ہے اس کا گلا روندھ جائے گا، آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اگر وہ بھکتی کا اتنا سا بھی مرم سمجھتا ہے تو. بھوتک سنسار والے کو ہو سکتا ہے کوئی افیکٹ نہیں کرے. پربھو جی آپ نے پڑھا ہے، کیسا لگا آپ کو والیوم ون؟ جو پہلا والیوم ون آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ملا آپ کو؟ جو سٹرگل کیا ہے پربھوپاد نے، جو انہوں نے بی اور اوپن کیا ہے پلانٹنگ دی سیڈ، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اتنی محنت ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کا پسنگ بھر بھی نہیں ہے، چینٹی مطلب پیر کے ناخون کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں. آپ نے پڑھا پربھو جی؟ ہاؤ ڈو یو لائک اٹ؟ وٹ از یور کمنٹ آن دیٹ؟ ویری انسپائرنگ. آپ کو سب سے پہلے یہ پربھوپاد کی چھوٹی پستک آتی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سمرائزڈ ہے دونوں والیومز کا، دیٹ از سمری آف بوتھ دا والیومز. آتی ہے نا پربھو جی چھوٹی کتاب ہے، اس چھوٹے گرنتھ کو پڑھنا چاہیے. ہم جب شاستروں کی چرچا کرتے ہیں تو پربھوپاد نے بہت جگہ لکھا ہے کہ بھگوت گیتا جو ہے دیٹ از اے بی سی ڈی آف بھکتی، بھگوت گیتا از سکولنگ آف بھکتی. سکول جیسے ٹینتھ پاس کرتے ہیں، پلس ٹویلو کرتے ہیں، بارہویں پاس کرتے ہیں، وہ بھگوت گیتا ہے. یو مسٹ ریڈ بھگوت گیتا، مسٹ انڈرسٹینڈ بھگوت گیتا. جب آپ کو سکولنگ کرتا ہے بچہ تو پہلے سب سے سکول کی کتابیں پڑھتا ہے، اسی طرح بھگوت گیتا جو ہے سکولنگ ہے. میں آپ کو دسیوں جگہ پر ان کے بھاگوتم لیکچرز میں، چتن چرتامرت لیکچرز میں، بھگوت گیتا لیکچرز میں، یہ رائٹنگ میں آپ کو ویدا بیس میں مل جائے گا. دین ہی رائٹس کہ اس کو گریجویشن کرنی ہے اس کو بھاگوتم پڑھنی چاہیے آگے بڑھنا ہے تو، اور جس کو پوسٹ گریجویشن کرنی ہے اس کو چیتن چرتامرت پڑھنی چاہیے. اور ہمارے ویشنو آچاریہ کہتے ہیں کہ جس کو پی ایچ ڈی کرنی ہے اس کو پربھوپال لیلا امرت پڑھنی چاہیے. پی ایچ ڈی مطلب ہائیسٹ کورس کرنا ہے جس کو، اس کو ایک گرنتھ پڑھنا چاہیے. تو آج اس کا جو ہے 37واں پرکرن سٹارٹ کرتے ہیں. کلکتہ مارچ سن 1971، आधी रात का समय था। प्रभुपाद अपनी नीची चौकी पर पीछे तकिए पर बैठे थे। उस इमारत में केवल उन्हीं के कमरे में बत्ती जल रही थी, अन्य सभी भक्त सो रहे थे। प्रभुपाद के सामने चौकी पर डिक्टेशन कार्ड करने वाली एक मशीन पड़ी थी तथा बंगाली व्याख्या युक्त श्रीमद भागवत का एक खंड रखा था। उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक छोटा सा फ्रेम किया हुआ चित्र गुलाब और एस्टर से सजे दो छोटे फूलदानों के बीच में विराज रहा था। चौकी के निकट फर्श पर एक चौड़ी चटाई बिछी थी जो सफेद चादर से आच्छादित थी और जिस पर कुछ घंटे पूर्व भक्तजन और अतिथि बैठे थे, किंतु अब प्रभुपाद अकेले थे। यद्यपि वे सामान्यतः 10 बजे सो जाते थे और 3 या 4 घंटे बाद अनुवाद कार्य करने के लिए उठ जाते थे, लेकिन आज रात उन्होंने विश्राम नहीं किया था। उनकी भागवत की पुस्तक बंद पड़ी रही थी, उनकी डिक्टेटिंग मशीन ढकी रखी थी। उन्होंने अपने दो शिष्यों तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को मायापुर में जमीन खरीदने के लिए भेजा था। 6 दिन बीत गए थे किंतु अभी तक ना लौटे थे, ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा था। स्वामी जी ने उनसे तब तक न लौटने को कहा था जब तक सौदा तय न हो जाए, अतः 6 दिन का समय आवश्यकता से अधिक था। वे चिंतित थे और निरंतर अपने शिष्यों के विषय में सोच रहे थे। एक पॉइंट टू बी नोटेड, स्मरण उस वक्त किसका हो रहा था? शिष्यों का। लोग प्रश्न करते हैं कि इसका मतलब है कृष्ण का भी स्मरण हो गया, क्योंकि अब स्मरण किसका हो रहा है? शिष्यों का हो रहा है, तो कृष्ण का विस्मरण हो गया। इस साधारण व्यक्ति के मन में यह बात आ सकती है, पर इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि शिष्य का स्मरण, उसके बारे में चिंता किसके लिए हो रही है? कृष्ण के लिए हो रही है। धरती कहां गई, नहीं मिली, क्या हुआ, लैंड परचेज करने भेजा, किसके लिए लैंड परचेज करने गए थे? तो शिष्य का स्मरण जरूर हो रहा है, परंतु बैकग्राउंड के अंदर स्मरण किसका चल रहा है? कृष्ण का। एक जगह पर जो है भक्त लिखते हैं, किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप कई बार जो है चैंटिंग नहीं कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ और चर्चाएं चल रही होती हैं, और आप कहते हैं कि 24 घंटे चैंटिंग होनी चाहिए, तो उसका कैसे सबूत माने हम? प्रभुपाद ने कहा कि मेरी पीठ पे कान लगा के देखो। जब पीठ पे कान लगा है तो अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आवाजें आ रही है। वो आवाज आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। चाहे बात कुछ भी हो रही है, चाहे विजिबली देखने में कुछ भी कार्य हो रहा हो, परंतु स्मरण हर वक्त हर क्षण हर पल चल रहा है। किसी ने कहा कि आप कहते हैं 2400 घंटे स्मरण करिएगा, रात्रि में जब सो जाते हैं तब स्मरण कैसे होगा? हाउ डू यू डू इट? तब स्मरण कैसे होगा? सोए तो 6 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, जितने घंटे भी आप सोए, उस दौरान में स्मरण कैसे हो रहा है? हाउ आर यू रिमेम्बरिंग कृष्णा? या आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 2400 घंटे भगवान के सानिध्य में हूं, मैंने एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं किया? तो हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज एक अपने लेक्चर में बताते हैं कि जब आप सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, उसके बाद निद्रा में चले जाते हो, और उठते ही भगवान के दर्शन करते हो, भगवान का स्मरण करते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, तो जो पीरियड आपने सोया है उस सुषुप्ता अवस्था के अंदर भी स्मरण रहता, यू आर ऑलवेज इन टच, आपने विस्मरण नहीं किया है। कितने लोग सोने से पहले भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, उनका नाम पुकारते हैं? आपको बहुत ध्यान पूर्वक सोने से पहले भगवान को उनके नामों से हरे कृष्ण महामंत्र करके पुकारना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, तो आपको जागते ही फिर यही करना चाहिए, तो आपका जो सोने का पीरियड है उसमें भी आपकी भक्ति चलती रहेगी, आपका स्मरण चलता रहेगा और नाम जप होता रहेगा। वो अदृश्य रूप से है, सुषुप्ति अवस्था में है, परंतु आपको उसका ज्ञान नहीं है। पर भगवान जब आपके हृदय में भगवान विराजमान है, वो सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? आप तो सो गए, तो भगवान भी सो गए। भाई मैं भी रेस्ट कर लेता हूं, ऐसा होता है क्या? इसका प्रूफ है कि ऐसा नहीं होता। आप रात्रि में सोइए और सोने से पहले धारणा करके सोइए कि मैं 4 बजे मुझे आज उठना है। 4 बजे आपकी नींद अवश्य खुलेगी, चाहे आप दोबारा सो जाओ, क्योंकि वो हृदय में विराजमान है, आपकी इच्छा रिकॉर्ड हो गई है। जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है, आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि 4 बजे मोबाइल में अलार्म बजना चाहिए। प्रोग्रामिंग करी है ना आपने मोबाइल में 4 बजे का अलार्म बजना चाहिए, तो 4 बजे मोबाइल अलार्म बजा देता। तो इसी तरह जो है, भगवान आपके हृदय में विराजमान है, आपकी इच्छा रिकॉर्ड हो गई है, शार्प एट 4 o'clock जितने बजे भी आप जागना चाहते हैं, भगवान उस बटन को ऑन कर देते हैं, यू गेट अप, भगवान जाग रहे हैं। अब यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि वो अपने शिष्यों का स्मरण कर रहे हैं। मंद समीर आया, अपने साथ खुली खिड़की से नीम वृक्षों की सुगंधी अंदर ले आया। रात ठंडी होती जा रही थी और प्रभुपाद ने अपने कंधों के चारों ओर एक हल्की चादर ओढ़ ली थी। वे विचार मग्न थे, सफेद मनसद के सहारे बैठे हुए थे। कमरे के परिचित दृश्यों पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता था। उनकी बगल में पीने का पानी भरा मिट्टी का एक लोटा रखा था और गमले में उगा तुलसी का एक पौधा लकड़ी के एक छोटी चौकी पर पड़ा था। बिजली जो दिन रात के अधिकांश भाग में बंद रहती थी, उस समय चालू थी और सर के ऊपर लटके खुले बल्ब के चारों ओर कीट पतंग मंडरा रहे थे। एक छिपकली छत में चक्कर लगा रही थी और कभी कभी कोई कीड़ा पकड़ने के लिए बल्ब की रोशनी की ओर तेजी से भाग बढ़ती थी। कमाल कृष्ण और बलिमर्दन इतना समय क्यों लगा रहे थे? 6 दिनों से अधिक प्रतीक्षा की जा रही थी। वे मायापुर में जमीन प्राप्त करने का प्रयत्न वर्षों से करते आ रहे थे और इस बार संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। उन्होंने तमाल कृष्ण और बलिमर्दन को अच्छी तरह समझाकर भेजा था और अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। विलंब का अर्थ कुछ समस्या या जोखिम भी हो सकता था। जिस भूमिखंड के लिए प्रयत्न कर रहे थे, वे 9 बीघे का एक टुकड़ा भक्ति सिद्धांत मार्ग पर महाप्रभु चैतन्य के जन्मस्थल से 1 मील से कम दूरी पर स्थित था। मुस्लिम किसान शेख बंधु, जो उस भूमिखंड के मालिक थे, ऊंचे दाम मांग रहे थे। हाल ही में कलकत्ता के एक वकील, जो नवदीप से परिचित थे, उचित मूल्य पर सौदा कराने में सफल हुए थे। शेख बंधु 14,500 रूपये में मान गए और प्रभुपाद ने कृष्णनगर स्थित अपने बैंक से इस राशि को निकाले जाने की अनुमति दे दी थी। इसलिए तमाल कृष्ण और बलिमर्दन मायापुर के लिए रवाना हो गए थे, जबकि प्रभुपाद कलकत्ते में ही अपना कार्य करते रहे। किंतु वे मायापुर गए हुए अपने शिष्यों की गतिविधियों के विषय में प्रायः सोचते रहते। उनका कार्य प्रभुपाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अतः वे उनके मन में बने रहे और प्रभुपाद अपने कार्य के बारे में उन्हें आशीर्वाद देते रहे। प्रभुपाद मायापुर में इस्कॉन का एक केंद्र चाहते थे। ये ऐसी इच्छा थी जो उनके आंदोलन के बढ़ने के साथ सालों में तीव्र होती आई थी। वे मायापुर आसानी से जा सकते थे अथवा वहां रह सकते थे, यह कोई समस्या नहीं थी, किंतु वे अपने शिष्यों के लिए एक स्थान चाहते थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें पश्चिम में धर्मोपदेश करने का आदेश दिया था और अब कृष्ण भावनामृत संघ की सफलता के लिए पश्चिम के वैष्णव मायापुर में एक केंद्र चाहने लगे थे, जहां वे रह सकें, पूजा अर्चना कर सकें और पवित्र धाम के बड़े लाभ को प्राप्त कर सकें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मायापुर के महत्व पर बहुत बल दिया था और उनके कुछ सन्यासी भक्तों के वहां मंदिर थे, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को मायापुर में शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए? नया टेम्पल प्रोजेक्ट आ रहा है, 14,500 में पुराना लैंड लिया गया था। आज जो टेम्पल प्रोजेक्ट है उसका बजट कितना है? 18,500 करोड़, 14,500 और 1,850, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़। तो जो 14,500 में लैंड लिया गया था उसमें जो मंदिर बना हुआ है, जो प्रेजेंट है इस वक्त, जो उसमें गेस्ट हाउसेज जो एरियाज बने हुए हैं, उन्हीं को ही जब हम जाते हैं वहां पर दर्शन करते हैं तो चौंधिया जाती हैं आंखें कि कितना बढ़िया बना है। और जब 1,850 करोड़ वाला बन जाएगा तो हमारी आंखें चौंधियाएंगी नहीं, फट जाएंगी। चौंधियाने और फटने में फर्क है, फट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, इमेजिन करिएगा। ये प्रभुपाद जी का विजन है जो उनके भक्त जो हैं पूर्ण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जन्म से ही महाप्रभु चैतन्य और उनके धाम श्री मायापुर के महत्व से परिचित थे। वे कलकत्ता में बड़े हुए थे जहां महाप्रभु चैतन्य के विषय में हरेक को पता था, और चूंकि उनके पिता गौर मोहन देव महाप्रभु चैतन्य के शुद्ध भक्त थे इसलिए बचपन से ही वे गौर नेताई और गौर प्रदेश में उनकी लीलाओं के विषय में बंगाली गीत गाया करते थे। उन्होंने महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और लीलाओं को विशेष रूप में अपने गुरु महाराज से कलकत्ता में 1922 ईस्वी में मिलने के बाद गहराई से आत्मसात कर लिया था। महाप्रभु चैतन्य ने अपने जीवन के प्रथम 24 वर्ष मायापुर और नवद्वीप में बिताए थे, तब भी 500 वर्ष पूर्व की उनकी प्रत्यक्ष लीलाएं और लीलाओं के स्थान धूमिल हो चले थे। उनके जन्म स्थान का नाम मिट गया था, उनके शिक्षाओं के विषय में भ्रांतियां होने लगी थी और उनका दुरुपयोग होने लगा था। महाप्रभु चैतन्य से विशुद्ध गुरु शिष्य परंपरा के चलते रहने पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव होने तक महाप्रभु चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन और शिक्षाओं के प्रसार का आरंभ नहीं हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य वैष्णव धर्म की बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक अखंडता को पुनः स्थापना के प्रचार के लिए कई ग्रंथ लिखे और प्रचार किया। उन्होंने शोध की और नवद्वीप क्षेत्र को खोजकर महाप्रभु चैतन्य के ठीक जन्म स्थान को सुनिश्चित किया। वैदिक साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि विष्णु के कई पूर्व अवतारों ने अपनी लीलाएं नवद्वीप में करी थी। एग्जाम्पल दीजिए। कहां पर? नरसिंह देव की लीला जो है वो कहां पर है? नवद्वीप में। नरसिंह पल्ली कहां है? नवद्वीप में जब आप जाते हैं तो जालंगी रिवर जो है उसको पार करने के बाद आप स्थान आता है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसके बाद भक्ति विनोद सुरभि कुंज और उसके आगे 12 किलोमीटर जाएंगे तो नरसिंहपल्ली स्थान आता। उस नरसिंहपल्ली स्थान में एक पोखर है, उस पोखर का महत्व तो क्या है कि वहां नरसिंह भगवान ने अपने हाथ धोए थे। तो लीलाएं हुई हैं जो लुप्त हो गई थी, लोगों को ज्ञान नहीं रहा था, विलुप्त होने के बाद फिर जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एक करके सब स्थानों को ढूंढा और स्थापित किया। आगे लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप की विगत महिमा के संबंध में केवल साक्ष्य नहीं जुटाए वरना उनके भविष्य की महिमा के संबंध में भी भविष्यवाणी की कि जब वहां महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं पर आधारित धर्म का उद्भव होगा तो उनका प्रसार समस्त विश्व में होगा और यूरोप और अमेरिका के वैष्णव अपने बंगाली बंधुओं से मिलकर जय सचिनंदन का कीर्तन करने के लिए नवद्वीप में भारी संख्या में एकत्र होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा कि ऐसा समय आएगा जब गंगा जी के मैदान में नवद्वीप क्षेत्र में समस्त संसार को महाप्रभु चैतन्य की महिमा का उद्घोष करते हुए एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण होगा। 100 साल पहले भविष्यवाणी हो गई, डन होगा ऐसे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता और आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए महाप्रभु चैतन्य की शिक्षाओं और नवद्वीप धाम की महिमा के प्रचार के निमित्त गौड़िया मठ का निर्माण किया था। उन्होंने एक धनाढ्य शिष्य को प्रेरित करके उसकी पूरी संपत्ति से मायापुर में महाप्रभु चैतन्य के जन्म स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया था और महाप्रभु चैतन्य के कीर्तनों के स्थान पर स्मारक के रूप में कीर्तन हाल बनवाया था। उन्होंने मायापुर में अपने लिए भी एक आवास बनवाया। उन्होंने समस्त देश में मंदिर बनवाए जिनकी संख्या कुल 64 थी, किंतु चूंकि वे चाहते थे कि विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा भाषी महाप्रभु चैतन्य के आंदोलन को स्वीकार करें, इसलिए प्रथम वरीयता के रूप में उन्होंने कृष्ण भावनामृत साहित्य के प्रकाशन और वितरण पर बल दिया। कलकत्ता के मंदिर में बैठे अपने कमरे में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर की दूरदर्शिता से सहमत थे, एग्रीड, किंतु इन महान कल्पनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें व्यवहारिक कदम उठाने थे। इन्हें अपने अत्यंत विनम्र भाव से उठाकर संतुष्ट थे। किसी भक्त को केवल दिवा स्वप्न नहीं देखने चाहिए इस आशा में कि कृष्ण अपने चमत्कार से सब कुछ पूरा कर देंगे। मामला गड़बड़ है। मन में विचार आ सकता है कि सब कुछ तो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, पर हम कौन है करने वाले? हमारी जो बुद्धि है उसमें ये बात पंच कर सकती है, पर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। किसी भक्त को केवल दिवा स्वप्न नहीं देखने चाहिए कि कमरे में बैठा रहे रजाई में मुंह देखे कि मंदिर अपने आप बन जाएगा, प्रकट हो जाएगा, दीवारें खड़ी हो जाएंगी, छत बन जाएगी, डीटीज आ जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी, वगैरह 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 वगैरह, ये दिवा स्वप्न है। एफर्ट्स करने चाहिए। एफर्ट्स के साथ जो चमत्कार होता है वो एक अलग प्रकार का है, एफर्ट्स के बिना चमत्कार एक अलग प्रकार का है। कैसा है कि आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, छत फटी और सिक्के गिरने शुरू हो गए, कोई आपने तंग काम नहीं किया, वो चमत्कार है जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं था। आप कमरे में बैठे हैं, छत फटी और सिक्के गिरने, आपके आंगन में सिक्कों की बरसात हो रही है, अशरफियां गिर रही हैं, दिनार गिर रहे हैं, पाउंड गिर रहे हैं, डॉलर्स गिर रहे हैं, वो चमत्कार है। पर यहां किस चमत्कार की बात हो रही है कि आपके एफर्ट्स करते बाद, आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से, आपके कार्य से भगवान प्रसन्न हैं, और जब वो रिजल्ट देते हैं तो किसी चमत्कार से कम नहीं। सॉरी, वो भी चमत्कार है, पर यहां किस चमत्कार की बात हो रही है कि आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो चमत्कार की आशा मत करें। मंदिर बनाने की बात चल रही है ना, तो उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। जब एफर्ट्स करेंगे तो कृष्ण जब कृपा करेंगे, कृष्ण जब जो है सहायता करेंगे, तो वो भी एक चमत्कार होगा, वो भी एक जो है भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं, एफर्ट्स फ्रूटफुल हो रहे हैं। आज भक्तों ने एफर्ट किया कि मायापुर में 1850 करोड़ का टेम्पल बने। इसका प्रीवियस बजट 700 करोड़ रुपया था, इट वॉज 700 करोड़। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भक्त जो है और प्लेज किए जा रहे हैं, इसमें ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, और बढ़ते बढ़ते जो है उसका बजट डबल से ज्यादा हो गया। ये चमत्कार है, एफर्ट्स हैं, एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो चमत्कार है। यस, पीपल आर कमिंग। मैंने अप्रोच किया है, आप तैयार नहीं हो, या मैंने अप्रोच किया है, आप तैयार हो गए हो, तो ये चमत्कार है, समझे जी। किंतु प्रभुपाद, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, किंतु प्रभुपाद केवल निष्क्रिय बने दिवा स्वप्न नहीं देख रहे थे, निष्क्रिय बने, जो बात मैं कह रहा हूं यहां पर सर्टिफाई हो गई। भारतवर्ष में वर्षों से अकेले प्रयास करते हुए वे पश्चिम जाने की अपनी योजना पर अड़े रहे और कृष्ण ने अंत में उनकी इच्छा पूरी कर दी, ये चमत्कार से कम नहीं है। मिराकल कहते हैं ना, मिराकल, कि सुमिति मुरारजी तैयार हो गई, मेरे जो कार्गो शिप है उसमें आपको फ्री टिकट देती हूं, चले जाइए। अमेरिका में परिस्थितियां जैसी भी रही हों और कृष्ण की कृपा से छोटी मोटी सुविधाएं प्राप्त हुई हों, उनका उपयोग करते हुए उन्होंने धर्मोपदेश किया और धीरे धीरे कदम ब कदम उन्हें सफलता मिली। विश्वव्यापी भक्त संघ की महान कल्पना को उन्होंने साकार किया था। एक एक कदम करके वे निरंतर आगे बढ़ते रहे थे, उत्तरोत्तर अधिक संतोष के साथ अपने महान लक्ष्य की पूर्ति के निकटतर पहुंचते गए थे। उन्होंने अपने महत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य को सदैव मन में बनाए रखा था। चमत्कार की जब बात होती है, भगवान की कृपा की बात होती है, तो देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू पीपल, कितने लोग पंजाबी बाग मंदिर में 10 साल से आ रहे हैं, 10 ईयर्स। जितना प्रचार आज है क्या 10 साल पहले था? क्या जितनी संख्या गाड़ियों की आज बाहर लगती है क्या 10 साल पहले 63 में लगती थी? क्या उतने लोग जो है फेस्टिवल में आते थे? तो आज जो 10 साल के अंदर प्रोग्रेस हुई है किसी चमत्कार से कम नहीं, इट्स अ मिरेकल। आज आप संध्या आरती में टेंपल हॉल में आपको जगह खाली नहीं मिलती। अभी बलराम जयंती आएगी, मंदिर का उस दिन जो है बलराम जी का, वंश कृष्ण बलराम की ड्यूटीज है, उनका जो है आविर्भाव हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है, यहां पर वो दिवस भी है। उस दिन बाहर दरवाजे तक खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, डिस्टर्ब रहेगा पूरा माहौल जो है वो इतना भरा रहेगा यहां पर कि जो नया व्यक्ति आएगा वो कहेगा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दर्शन करने जाना चाहता हूं तो रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं क्या हो रहा है यहां पर। तो ये जो मिराकल है ये दिवा स्वप्न नहीं है, सपना नहीं है कि झूठा सपना, बैठे रजाई में आराम से और सपना लिया तो भीड़ इकट्ठी हो गई। इट इज ए मिराकल इन रिस्पॉन्स टू दी एफर्ट्स, मेहनत करी गई है ब्रह्मचारियों ने, भक्तों ने, कॉन्ग्रेशनल डिवोटीज ने, डोनर्स ने, सबने मेहनत करी है। इट्स नॉट एक एफर्ट नहीं है, इट्स एफर्ट ऑफ ऑल, और उस मेहनत से जो है जो सपना है वो साकार हुआ है कि दिल्ली के अंदर कृष्ण बलराम जी प्रकट होने चाहिए और यहां पर प्रकट हुए। अभी अगला प्राकट्य किसका है दिल्ली में? नेक्स्ट प्राकट्य किसका है? आपकी आवाज नहीं आ रही। कृष्ण भगवान तो प्रकट ही हैं, हर समय उपस्थित हैं। अभी हम लीलाओं की बात कर रहे हैं, प्रभु जी बता रहे हैं महाराज का विजन है कि दिल्ली के अंदर अब नरसिंह भगवान को प्रकट होना है। कहां होना है? रोहिणी में होना है। अब देखिए ये चमत्कार है, जब रोहिणी से प्रीचिंग के लिए यहां बसें आती थीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है ना 2099, 98, 96, 97 के जमाने में रोहिणी से एक बस, दो बस, तीन बस, चार बस शाम को जो यहां आया करती थी। मुरली कृष्ण प्रभु उस बस में बैठ के, छोटे से थे जब आया करते थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। आज देखते हैं कि आज वो बसें एक टेम्पल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। उन बसों का जो कन्वर्शन है वो अब एक टेम्पल हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोहिणी जब लेक्चर देने जाता हूं तो टेंपल हॉल में खड़े होने की जगह नहीं होती, इतने भक्त आते हैं वहां पर, इतनी भीड़ रहती है। संडे शाम को टेंपल हॉल में खड़े होने की जगह नहीं होती, लोग बाहर खड़े होकर सुनते हैं, मतलब इतना वहां पर जो है कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटीज का अट्रैक्शन है। तो ये जो कन्वर्शन आया है, ये विजन अर्थात स्वप्न है, पर एफर्ट युक्त स्वप्न है, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मेहनत करी जा रही है, पुरुषार्थ किया जा रहा है और चमत्कार मिराकल होता जा रहा है, वन बाय वन बाय वन वन बाय वन। अब अगला प्रोजेक्ट कहां आ रहा है? द्वारका बिल्कुल रॉ एरिया है, जहां से कोई बस यहां नहीं आती, यहां से कोई बस बड़े मंदिर नहीं जाती। बट जब भक्त लोग मेहनत करेंगे, भक्त लोग एफर्ट्स करेंगे, अपने अपने टाइम को वहां डेडिकेट करेंगे, जैसे यहां प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, प्रभुपाद ने खुद आचरण से दिखाया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को भगवान की सेवा में डेडिकेट करते हैं, समर्पित कर देते हैं, एकदम 100% समर्पण चल रहा है, 200% समर्पण चल रहा है। यहां कह रहे हैं एक एक कदम करके वे निरंतर आगे बढ़ते रहे थे, उत्तरोत्तर अधिक संतोष के साथ अपने महान लक्ष्य की पूर्ति के निकटतर पहुंचते गए थे। उन्होंने अपने महत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य को सदैव मन में बनाए रखा था। शब्द नोट करिएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को सदैव मन में बनाए रखना। इट इज अ वेरी गुड वर्ड, वेरी गुड लैंग्वेज। एंड हमको जो हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति को कभी भी मन से गायब नहीं होने देना, विचलित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। बॉम्बे टेम्पल जब बन रहा था तो क्या समस्या आई थी? बंदूकें निकल आई थी। पढ़िए प्रभुपाद लीलामृत। परंतु प्रभुपाद ने किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करी, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। मंदिर बनेगा, कहां बनेगा? जुहू के लिए जब जमीन खरीदी गई थी तो वहां क्या था? इट वॉज ए जंगल। कोई वहां रहना नहीं चाहता था, कोई वहां बसना नहीं चाहता था। समुद्र किनारे चूहे, छिपकलियां, नेवले उसमें घुमा करते थे, बड़ा बड़ा झाड़ खंखार। उस जगह को प्रभुपाद ने सेलेक्ट किया। आज फिल्म स्टार कहां रहना पसंद करते हैं? जुहू में। उनके बैंगलोर हैं जुहू में। मंदिर से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको फिल्म स्टार्स के बैंगलोर मिलेंगे। तो ये जो विजन है जिसके लिए एफर्ट्स किए गए, जिसके लिए मेहनत करी गई, अर्थात जो महत्तर लक्ष्य की प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसको मन से कभी भी हल्का नहीं पड़ने दिया, कभी भी जाने नहीं दिया। यस, दिस हैज टू बी अचीव्ड। ये हमें प्राप्त करना है, उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े वो दी जाएगी। प्रभुपाद कभी कभी एक गरीब कुम्हार की कहानी सुनाया करते थे जो अपना कारोबार बढ़ाकर आश्चर्यजनक रूप से धनाढ्य बनने का स्वप्न देखा करता था। एक रात कुम्हार सोते हुए स्वप्न देख रहा था कि उसके पास कितनी भूमि और कितने मकान होंगे, कितनी सुंदर पत्नी होगी। जब कुम्हार को विचार आया कि उसकी पत्नी हो सकता है उससे झगड़ा करे तो उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, यदि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करेगी तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा। और ठोकर मारते हुए उसने अपने भंडार में बचे केवल दोनों बर्तनों को भी तोड़ डाला। इस तरह अकिंचन बन गया। ले रहा है सपना और तोड़ दिए ओरिजिनल। अकिंचन हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कीर्तन करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, धर्मोपदेश करते हुए सब समय प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रचार और पूर्व आचार्यों के स्वप्न को पूरा करने की अपनी योजनाओं में डूबे रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। कीर्तन करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, धर्मोपदेश करते हुए सब समय प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो स्वप्न लिया है, जो उनका उनकी जो विजन है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको उनकी योजनाएं हैं, उनको पूरा कैसे किया जाए, इसके बारे में विचार साइड बाय साइड चलता रहता। अब वे अपना अगला कदम पूरा करने की चिंता में थे। उसके लिए आधी रात के बाद भी वे अपने दोनों शिष्यों और अपने महत्वपूर्ण मिशन पर ध्यान लगाए हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभुपाद इन तरह विचारों में मग्न बैठे थे तो जो एकमात्र ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं वे रात की सामान्य ध्वनियां थीं। दीवारों के भीतर चूहे, बरामदे में खराटे भरता एक ब्रह्मचारी और दूर सड़क पर अपनी लाठी ठोकता गश्त लगाता रात का एक चौकीदार। एक भी मोटर कार नहीं चल रही थी। कभी कभी केवल लकड़ी का रिक्शा टूटी फूटी सड़क पर चरमराता हुआ सुनाई देता था। प्रभुपाद भयभीत आशंकित थे कि मेरे लड़कों को, अर्थात तमाल कृष्ण बलि मर्दन को, किसी ने लूट तो नहीं लिया, कि पता लगे कि हाथ में जो पैसे थे वो भी गए। जाने के पूर्व उन्होंने तमाल कृष्ण को सिखा दिया था कि किस प्रकार रुपयों को कपड़ों की बनावटी थैली में भरकर कमर में बांधते हैं। किंतु ये धनराशि काफी बड़ी थी। अरे 14,500 क्या बड़ा है? آج ہم فیل کرتے ہیں. تھنک آف 40 years back, 35 سال پہلے جو ہے یا 40 سال پہلے, یہ دھن راشی 14,500 روپیہ کتنی بڑی ویلیو رکھتی تھی. آج جو پلاٹ یہاں پر 25 کروڑ کا آتا ہے نا, وہ تب 8,000 کا تھا, 9,000 کا تھا, 10,000 کا تھا. جب پنجابی باغ بنا تھا تو زمین کیا بھاؤ بکی تھی؟ بگننگ میں کیا ریٹ تھا؟ کچھ ریٹ نہیں تھا, اٹ واز سو چیپ. اس زمانے میں 14,500 میں لوگوں نے پورے پورے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, جن کی قیمت آج 25-25, 30-30 کروڑ روپیہ. کنتو یہ دھن راشی کافی بڑی تھی اور نودیپ کے آس پاس ڈکیتیاں پڑتی رہتی تھیں, یا کداچت کسی انیہ کارن سے ولمب ہوا ہو. کبھی کبھی زمین کے سودوں میں جن میں بھاری دھن راشی نہیں ہوتی ہے, کچہری چاہتی ہے کلرک پرتیک نوٹ کے نمبر و مولیہ لکھے, یا ہو سکتا ہے ٹرین میں ہی کوئی خرابی ہو گئی ہو. سہسا پربھو پاد کو سیڑھی پر پچاپ سنائی دی, کسی نے باہری دروازہ کھولا اور اب باہر کے برامدے سے ہو کر چل رہا تھا. پھر ہلکی سی دستک ہوئی. ہاں کون ہے؟ پربھو پاد نے پوچھا. تب تمال کرشن نے پرویش کیا. سانس میں سانس آئی. آ گئے شری پت وہ شیل پربھوپاد کے سامنے دنڈوت ہو کر گر پڑا. تو پھر کیا خبر ہے؟ تمال کرشن نے وجے پور نیتروں سے دیکھا, کہا زمین آپ کی ہو گئی. پربھوپاد نے اچھاس بھرتے ہوئے اپنی پیٹ ٹیک لی اور کہا اچھا اب تم آرام کرو. دیکھیے کتنا کشٹ دائک کام تھا ویٹ کرنا. اپنی ساری جمع پونجی لگائی جا رہی ہے, اب پربھوپاد کے من میں چنتا ہے کچھ ہو نہ گیا ہو. اور جیسے ہی تمال کرشن آتے ہیں, دنڈوت کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں, شبد کیا نکلتے ہیں کہ زمین آپ کی ہو گئی. یہ ایک اتنا بڑا کام تھا, اتنا ڈیفیکلٹ جاب تھا, اتنا مشکل کام تھا, جس کو جو ہے تمال کرشن اور بلی مردن پورا کر کے آئے. اور اس کام نے پربھوپاد کو کتنی پرسنتا دی ہوگی آپ امیجن کر سکتے ہیں. نو بج گئے ہیں, آج زمین تک ہی پہنچے ہیں, مندر آگے بنے گا, اگلی بار چرچا ہوگی. رے کرشنا.